प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम दुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तले उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा डावे से 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा डावे से 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दोरों चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुर्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, याम मीन नाम एक। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। ये संसार ये भक्तात्माएं मोक्ष मुक्ति के लिए बहुत से स्थानों पर जाते हैं, बहुत से संतों से संपर्क साधते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके विचार ज्ञान सुनते हैं। जिज्ञासु होते हैं और उनको जैसा भी कोई गुरु संत मिलता है वो जैसा भी ज्ञान उसे बता देता है वो उसको सत्य मानकर उनके द्वारा दिए गए सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते रहते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते और इस संसार के अंदर भी अपने दैनिक जीवन में भी कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति सतगुरु जी के पास ही होती है और भक्ति सही मिलेगी, सतगुरु पूरा मिलेगा और शिष्य मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा तो मोक्ष सुनिश्चित है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते और ये झूठे गुरुओं की से हम दीक्षा भी लेकर के साधना करते रहते तो हमें परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं होते जिनकी आशा लेकर के हम वहां जाते हैं। फिर कुछ दिन वहां जाते हैं तो फिर मन में आता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा तो कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है कि मैं वहां जाता हूं, वहां से ऐसे बहुत से लाभ होते हैं, फिर वो वहां जाना शुरू कर देता है। वहां से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो नास्तिक हो जाता है, ये सोच लेता है कि कोई भगवान नहीं और किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, या तो वो उस कष्ट में मर ही जाता है या फिर नास्तिक होकर अपनी ही सूझबूझ से वो धनी होने की चेष्टा करता है, चोरी करने लगता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है और ज्यादा कर्म बिगाड़ लेता है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक सतगुरु की भूमिका की और उन्होंने ये यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि और सभी क्रियाएं बताई और सभी परहेज बताए जो मर्यादाएं हमें रखनी अनिवार्य है एक भक्त को, तो वो सभी मर्यादाएं भी परमात्मा ने ही बताई। तो सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र कोई संत विश्व में एकाद ही होता है, वर्तमान में एक ही होता है, विश्व में दो सतगुरु नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा सतगुरु की भूमिका करने आए थे सन 1398 से सन 1518 तक काशी शहर के अंदर एक जुलाहे के रूप में, एक सिंपल मैन के रूप में अपना दैनिक कार्य करके दिखाया। एक कृत्रिम परिवार था, कृत्रिम बनावटी। वो कैसा था कि परमात्मा सतलोक के अंदर रहते हैं। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो परमेश्वर सतलोक में शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है और वहां से वो चलकर आता है यहां संसार के अंदर अपनी ही जानकारी को स्वयं बताने के लिए। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहां जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कर्त्रम परिवार था उनका, वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर ज्ञान सागर में यह प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस दूध को परमात्मा पिया करते थे। एक तो यह सिद्ध होता जा रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं, परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहां रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, यह हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज यह निष्कर्ष निकल रहा है, यह सच सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पढ़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे, ये संस्कृत के बोलने वाले गुरुगण चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कह कह भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था। जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट पता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100-100 सितंभ किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू जुला है, तू धानक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तू मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे दातम ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे वे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा जिसने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा और भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं, क्या आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे और साथ में पुराणों को, गीता को, सबको आधार बताते थे और परमात्मा को निराकार बताते थे और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी, एक साधारण सब ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा के थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहां आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है, तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, ऐसे कर जूता पहन ले और आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा, उस सफर में। इसी प्रकार हम जीवन रूपी सफर में चल रहे हैं, हमारे सफर में चाहे किसी प्रकार के कांटे हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार के कष्ट हैं, तीन ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत मानते हो स्वामी रामानंद जी, कहा भाई सत मानता हूं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों को कंठस्थ याद किए थे, 104 वर्ष की आयु होगी थी, 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था, तो बचपन से ही वेदों गीता और पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय वो किया ही करते थे। उनको कंठस्थ याद था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है, तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आपका पूज्य देव कौन है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु है और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं, लेकिन मैं वैष्णव साधु हूं, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूं, मेरा ईष्ट विष्णु जी है। विष्णु जी सतगुण है? परमात्मा ने पूछा, हां सतगुण कहो और चाहे विष्णु जी कहो, एक ही है, ठीक है। तो परमात्मा ने कहा आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते हैं जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है और भगवान विष्णु ही तीन लीला करता है, रजोगुण युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं और तमोगुण युक्त होकर के ये सहार कर देते हैं, ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं, ये अजरो अमर है, अविनाशी है। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के, परमात्मा कहते हैं देवी भागवत 3 स्कंद उसमें पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर तो दास आपको बताएगा, सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है, विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो अपनी मां दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और त्रोभाव होता है, हम नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है, और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा बोतिया व्यंदरे। ये दिखें थे बड़े विद्वान संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ सारा सारा दो दो घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते हैं और कैखे का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आंखों में उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों गुरुओं पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया व्यंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है इनसे प्रश्न किया जाता है ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। ये नपट अंधे हैं आंखों वाले अंधे हैं इनको ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि फिर आपने ये पढ़ा क्या स्वामी जी। अब स्वामी जी कति टूट गए। देखो साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है। उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जान बूझ साची तजय करे झूठ तैने और ताकि संगत है प्रभु सो पद में भी ना दे। वो कृत घनी व्यक्ति होगा चाहे वैसे गुरु बना बैठा है जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत तेरा नाम गलत तेरी साधना गलत और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि भी मैं मेरा मार्ग गलत है तो वो कृतगनी प्राणी बताया है। उसके विषय में कहा है कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं दे। इसे नालायक आदमी की तो सोपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत उनके नाम गलत उनकी साधना गलत। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है उनका नाम गलत उनका ज्ञान गलत उनकी भक्ति गलत उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी आसाराम सुधांशु जी रिये कुमार स्वामी ये इनका सारा मार्ग गलत और ये तीन देव की भक्ति करते हैं इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए ये क्यों कह रहा रामपाल दास इसका उद्देश्य क्या है। कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है उनका भी जीव रक्षा होगी उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के। संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और साधना ठीक है नहीं तो भक्त नहीं है ना वो गुरु है वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफी लंबे सफर पर पहुंच गया और वहां उसको कोई टोक रहा है कहां जा रहे हो भाई तो वो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक दो चार और से सलाह लेनी चाहिए, अभी सचमुच मैं जा रहा हूं ये मार्ग ठीक है कि नहीं, और उसके साथ झगड़न लग जा के तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत। तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए इसका और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूं, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूं। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को उस मानचित्र को सामने धर ले और भाई तू यहां खड़ा है ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली और आप इशार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहां पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा कि आप शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करें और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखे है इन सदग्रंथों को, दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे, इनको संत भी सुने उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक संभत्या, एक नेक व्यक्ति के लक्षण, और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे उसके भले में कहर उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी, और यही परीक्षा नीच नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी, अगर साच कहूं तो इस जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहां जाओगे स्वामी जी। अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे दाता? अब विद्वान पुरुष थे, तुरंत मानिए श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूं साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूंगा स्वर्ग में, उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूंगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी फिर कहां जाओगे? फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहां जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो? उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूं आप कहां जाओगे। यहां पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा? किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहां दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं, ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए? अपने पेट के लिए। तो यहां दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहां पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमान आचरण करे। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है और पाप डेली हो रहे हैं। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहां पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा, आपको परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर। हम सभी अपने बच्चों पे बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें, कि रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को, 1 लाख मुश्किल से। और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे, अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुर साहेब की हरि आए हरि आने। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो, और जब हमें सत्साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपए बीड़ी तमाकू शराब महीने में 10-10 हजार रुपए खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको खत्म करेंगे। हम भगत बनकर जिएंगे तभी हम आगे सफर पर बढ़ेंगे। तो प्रसंग चल रहा उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहां का ये व्यवस्था ऐसी है, आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी काम वश जाते हो तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में हिसाब लगा लो, और करते हो तो शास्त्र विद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटे मोटी कोई धर्मशाला पे वो बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य है। ये भी शास्त्र विरुद्ध है, जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं बाजरा ज्वार जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस एक एकड़ जमीन को कितनी बार तो बहना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहां हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है एक एकड़ जमीन को। तो स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे, फिर उसके अंदर बीज डाला गेहूं चने बाजरा ज्वार का, जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा, फिर उसमें खाद डाला उसमें पैसा लगा, दवाई डाली उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की उसमें पैसा लगा, फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा, फिर वो दो दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़ो मत, एक वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है, जहां हम रह रहे हैं इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुनों को करने के लिए एक विधान है, जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा तुम कौन राम का जब ते जापम तात कट नायती नो तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते, और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे, तो इससे शुद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है, कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बम्भारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बम्भारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अग माने पाप, अरी माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बम्भारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहां फंसे हैं, हमारे संस्कार यहां पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने, तो ये संस्कार हमारे जो हैं इनके कारण हम बंध में हैं, और ये काल की बंध है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं तुम्हें यहां सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहां से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांडे में बंदी छोड़ कहा आए, सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गव्वे चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मर्द जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था, अन्यथा वो सोच बैठते घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूं। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान ज्ञान योग उनका खोल गए और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति दुलाहा धानक रूप में रहा करते थे वो है वो भगवान सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और अब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी के मुझे पार किया, दादू साहिब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहिब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे, एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे, सारे नगर में हाहाकार माच गई गांव के अंदर, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना मर रहा है ना जी रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मर्त भी नहीं कह सकते। 3rd दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है, पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहां वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहां मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे, जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहां एक घाट बना हुआ था, वहां स्नान करने जाते थे। वहां परमात्मा उनको दो बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहां काशी में रहते थे उस रूप में गए, दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया, कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहां पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धारणक रूप में कहे वहां मैं जुल्हा रूप में रहता हूं और उधर से कहते रामानंद जी मेरा गुरु है, तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थाई स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है, जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है, नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहां से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहां कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है, अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहां जहां कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया और जब नानक साहिब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था भाई सूरक मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरासियाणा बहुता भार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए।
बाबा जी नमस्कार।
हाँ सच्चाई
बाबा जी, क्या शुभ नाम है आप जी का?
ये भवरदास।
भवरदास जी कहाँ से आए आप?
रतलाम जिले से, गांव बरबोरना, तहसील रतलाम।
बाबा जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
हम पहले इंदौर सत्संग सुना और व्यास गए थे, गुरु गोविंद सिंह जी से नामदान हम लोगों ने उपदेश लिया था, मतलब पति पत्नी और गाँव वालों ने सभी ने, हम वहाँ गए और वहाँ से नाम उपदेश लिया था।
राधा स्वामी सत्संग व्यास से संत गुरविंदर सिंह जी से आपने नाम उपदेश लिया था, तो संत गुरविंदर सिंह जी ने आपको क्या नाम जाप करने के लिए दिया था?
ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें पांच नाम का उद्देश्य दिया था, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सत्य नाम, ये पांच नाम।
जो आपको गुरविंद सिंह जी महाराज द्वारा ये पांच नाम का जाप करने के लिए दिया गया था, उस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया और क्या लाभ मिला आपको?
हमको करीबन 10-12 साल तक नाम का जाप किया, ढाई ढाई घंटा तक शाम सुबह, मतलब काफी प्रयत्न किया पर लाभ हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। और हम लोगों ने वहाँ बट्टियों पे सेवा की इंदौर में, और गाँव के अंदर पॉइंट भी खुलवाया, बहुत ही मेहनत करके हम थक चुके थे, मतलब इतने बड़ा थक चुके कि मतलब गुरु कोई है भी नहीं पृथ्वी के ऊपर। इस प्रकार से फिर उसके बाद हम फिर एक नाई जात का मिला सत्संगी, उसने कहा भोपाल चले, भोपाल हम मधु परमहंस जी के वहाँ गए और उनसे भी एक नाम लिया। दो साल तक वहाँ हम लोगों ने मतलब नाम का उद्देश्य लिया, पर वहाँ से हमको संतोष नहीं हुआ।
भोपाल में जब आप गए मधु परमहंस जी से आपने नाम उद्देश्य लिया, तो मधु परमहंस जी ने आपको क्या नाम जाप करने के लिए दिया?
सतनाम दिया, वो सर पर हाथ रख के सतनाम कर दिया था।
तो कैसे जाप करते थे उसका?
अरे उसका जाप मतलब बैठ के करते, पर बाकी उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ।
बाबा जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
मतलब हमारे एक मिलने वाला सत्संगी बाहर गांव का सिणू का नाई जात का, उसने कहा कि भोपाल चले, उसने बहुत सी जगह से नामदान ले रखे थे और हमको भी उसने रास्ता बताता रहा, और उन्होंने कहा कि अब वहाँ टीवी साधना चैनल आप देखिए राधा स्वामी वाले, तो हम लोगों ने राधा स्वामी चैनल वालों ने यह चैनल देखना चालू कर दिया साधना चैनल, तो उसने कहा कि अपनों ने मतलब हरियाणा चलना पड़ेगा बरवाला रामपाल जी महाराज के वहाँ से, और वहाँ से दीक्षा लेंगे तो ही अपना गाड़ी पार होगी, बाकी हम नहीं होगी गाड़ी। पूरे देश हर युग में कबीर साहब आए हैं और आज भी कबीर साहब रामपाल जी महाराज के हिसाब से आज भी अवतार लेके आए हैं, और पूर्ण गुरु तत्वदर्शी गुरु वही है, और उन्हीं से अपने को दिखा लेंगे तो अपना उद्धार होगा, बाकी उद्धार नहीं है। इसलिए हम यहाँ मतलब पुस्तक ज्ञान गंगा हम लोगों ने मिसेज करके पुस्तक मंगाई और टीवी चैनल पे देखा, और पूर्ण चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हम लोगों ने निचोड़, बहुत पुस्तक पढ़ पढ़ के हम लोगों ने फिर यहाँ का आए। दो व्यक्ति आए हमारे गाँव से और परम संत जी से हम लोगों ने नाम उपदेश ले लिया।
बाबू जी जैसे पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, संत गुरविंद सिंह जी से आपने नाम उपदेश लिया, 7-8 साल तक वहाँ भक्ति की, उसके आप बता रहे हैं आपको लाभ नहीं मिला, फिर आप भोपाल में मधु परमहंस जी से जुड़े, वहाँ पे आपने उनके बताए मार्ग से चलते हुए 2 साल उनकी भक्ति की, उसका भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ आए, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आए, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
26-7 को देहांत हुआ और मैं यहाँ आ गया, और मैंने पगड़ी रस्म नहीं की, इसलिए मेरे से विरोध काफी हो रहा है, इसलिए मैंने गुरु जी से रामपाल जी से निवेदन किया कि आप मुझे यही सेवा दीजिए और मैं आपकी शरण में रहूंगा, क्योंकि ये काल की दुनिया है, काल की दुनिया में कोई जीने नहीं देता है।
बाबा जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी कोई भक्त समाज है अपनी भक्ति मुक्ति का मतलब सतलोक अगर जाना चाहते हैं तो इन काल के हाथों से निकल जाइए, सभी दे रहे हैं काल के हैं, और आप अपना कल्याण करवाइए।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।